एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म और गैर फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और उनके विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। तो दोस्तों, आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1939 की फिल्म कपाल कुंडला का गीत पिया मिलन को जाना। आरजू लखनवी के बोल और स्वर और संगीत पंकज मलिक का। प्रसिद्ध उपन्यास कपाल कुंडला के किस चरित्र पर यह गीत फिल्माया गया है और कहानी के किस मोड़ व संदर्भ में आरजू लखनवी ने शब्दों का कैसा ताना बाना बुना है इस गीत के भाव को व्यक्त करने के लिए। किस अन्य फिल्म में पंकज मलिक और इला घोष की आवाजों में ये गीत सुनाई देता है। दक्षिण भारत की किन चार फिल्मों में इसी गीत की धुन पर गीत बने हैं, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन किया है शुभम बारी ने।
हमारे सिने और गैर सिने संगीत जगत में कितने ही मनमोहक और मधुर स्वर हैं जिन्होंने संगीत की धरोहर को समृद्ध किया है। इनमें हिंदी और बांग्ला गीतों का एक ऐसा विरल स्वर शामिल है जिसमें पिघले हुए सोने की लौ भी है और नर्म गुलाबी धूप की कोमलता भी, जो आवाज आनंददायक भी है और साथ ही साथ गंभीर भी। ये वो आवाज है जैसी आवाज संगीत जगत में फिर कभी किसी ने नहीं पाई। ये आवाज है पंकज कुमार मलिक की। कई इतिहासकारों का यह कहना है कि हिंदी और बांग्ला फिल्म संगीत के वर्तमान स्वरूप के पीछे पंकज मलिक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने 30 के दशक में शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, रवींद्र संगीत और पश्चिमी संगीत के विभिन्न शैलियों के मिश्रण से ऐसे ऐसे फिल्मी और गैर फिल्मी गीत रचे जिन्होंने इन आधुनिक गीतों को भी अपनी एक अलग पहचान दिलाई। पंकज मलिक संगीतकार के रूप में कलकत्ते के न्यू थिएटर्स के साथ शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े रहे। न्यू थिएटर्स की फिल्मों की खासियत उनके गाने हुआ करते थे। रायचंद बोराल, पंकज मलिक और तिमिर बरन जैसे संगीतकार तथा कुंदन लाल सहगल, कानन देवी, केसीडे और पंकज मलिक जैसे गायकों ने सवाक फिल्मों के उस शुरुआती दशक की फिल्मों को अपनी कलाकारी से चार चांद लगा दिया। वे गाने अब फिल्म संगीत के धरोहर के बेशकीमती नगीने बन चुके हैं। इन सब कलाकारों की वजह से उस जमाने में कलकत्ता हिंदी फिल्मों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। इस थिएटर की तमाम प्रसिद्ध फिल्मों में से आज हम लेकर आए हैं 1939 की फिल्म कपाल कुंडला का गीत पिया मिलन को जाना, जिसमें स्वर और संगीत है पंकज मलिक के। कपाल कुंडला महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है, जो पहली बार सन 1866 में प्रकाशित हुई थी। यह जंगल में रहने वाली एक लड़की कपाल कुंडला की कहानी है, जिसे सप्तग्राम के एक युवक नव कुमार से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। लेकिन अंततः उसे पता चला कि वह शहर के जीवन के साथ खुद को समायोजित करने में असमर्थ है। बंकिम चंद्र के पहले उपन्यास दुर्गेश नंदिनी की सफलता के बाद उन्होंने एक ऐसी लड़की के बारे में लिखने का फैसला किया जिसे एक सुदूर जंगल में एक कापालिक यानी तांत्रिक ऋषि द्वारा पाला गया था और उसने कभी अपने पालक पिता के अलावा किसी को नहीं देखा था। कहानी आधुनिक पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दरियापुर कोंताई में स्थापित है, जहां बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने डिप्टी मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के रूप में काम किया था। कपाल कुंडला को उनके बेहतरीन और सबसे लोकप्रिय उपन्यासों में से एक माना जाता है, जिसका अंग्रेजी, जर्मन, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और संस्कृत में अनुवाद किया गया है। कपाल कुंडला उपन्यास को समय समय पर नाटकों, फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिल्मों की अगर बात करें तो मूक फिल्मों के दौर में सन 1929 में इस उपन्यास को पर्दे पर उतारा निर्देशक प्रियनाथ गांगुली ने। कपाल कुंडला के चरित्र में इंदिरा देवी और नव कुमार के किरदार में दुर्गादास बनर्जी नजर आए। सुनने में आता है कि कलकत्ते में यह फिल्म लगातार 29 सप्ताह चली थी। सवाक फिल्मों का दौर शुरू होते ही वर्ष 1933 में न्यू थिएटर्स ने इसे फिर एक बार रुपहले पर्दे पर साकार किया। नव कुमार के चरित्र में एक बार फिर दुर्गादास बनर्जी नजर आए, जबकि कपाल कुंडला बनी उमा शशि। फिल्म निर्देशक थे प्रेमांकुर अतोर थी। फिल्म में रायचंद बोराल का संगीत था। दोस्तों, यह एक बांग्ला फिल्म थी। इस फिल्म के 6 वर्ष बाद जब इसे हिंदी में बनाने की योजना बनी, तब कपाल कुंडला के किरदार के लिए लीला देसाई और नव कुमार के लिए नजमल हुसैन चुने गए। फिल्म निर्देशित की नितिन बोस और फणी मजुमदार ने, और संगीत, जी हां, पंकज मलिक साहब का। इस फिल्म के आज के गीत पर हम अभी वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इस उपन्यास पर आगे चलकर 2 और बांग्ला फिल्में बनी 1952 और 1981 में। दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण में कपाल कुंडला धारावाहिक काफी लोकप्रिय हुआ था। हाल ही में 2019-20 के दौरान स्टार जलसा बांग्ला टीवी चैनल पर भी दर्शकों ने इस उपन्यास को एक सोप ओपेरा के रूप में अनुभव किया। और अब जिक्र पिया मिलन को जाना गीत का। दोस्तों, न्यू थिएटर्स में हुए एक भीषण अग्निकांड में कंपनी की बहुत सारी फिल्मों के रील्स जलकर राख हो गए। इनमें कपाल कुंडला फिल्म भी शामिल थी। इसलिए यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज इस फिल्म का कोई भी प्रिंट उपलब्ध नहीं है और ना ही इस गीत के फिल्मांकन की विश्वसनीय जानकारी। लेकिन कुछ जानकार बताते हैं कि यह गीत फिल्म में कपाल कुंडला यानी लीला देसाई पर नहीं, बल्कि कमलेश कुमारी द्वारा निभाए मोती बीबी के चरित्र पर फिल्माया गया था, जिसमें वो नृत्य करती हुई देखी गई और पीछे से पंकज मलिक की आवाज गूंजती रही। अर्थात फिल्म के पर्दे पर किसी अभिनेता ने गीत पर लिप सिंकिंग नहीं की। अब इस गीत की सिचुएशन को जरा समझा जाए। तांत्रिक की पुत्री कपाल कुंडला जब नव कुमार से चुपके से विवाह कर उसके साथ सप्तग्राम चली जाती है, इससे तांत्रिक बहुत नाराज हो जाते हैं और अपनी पालिता पुत्री के इस विश्वासघात का बदला लेने का ठान लेते हैं। इस बीच नव कुमार की मुलाकात उनकी पहली पत्नी पद्मावती से होती है। पद्मावती के पिता ने किसी कारण के चलते अपनी पुत्री को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर मोती बीबी बना दिया था, जिस वजह से नव कुमार को उसे छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब नव कुमार केवल कपाल कुंडला से ही प्यार करता है, इसलिए अपने खोए हुए पति के प्रेम को वापस पाने के लिए पद्मावती उर्फ मोती बीबी अपने प्यार का इजहार करती हुई उसे अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश करती है। और इस गीत में मोती बीबी की वही कोशिश देखी जा सकती है। यह बात और है कि तमाम मोड़ों से गुजरती हुई कहानी एक दुखद अंत में परिणत होती है। इस गीत के बोलों पर अगर गौर करें तो पाएंगे कि आरजू लखनवी साहब के शब्दों का चयन बेहद ही अनोखा था। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनका अब किसी गीत में प्रयोग दिखाई नहीं देता। आरजू साहब ने कई बार कुछ अनोखे शब्दों का प्रयोग किया जो गीत के भाव और विचार के प्रवाह के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खा जाते हैं। यह गीत भी कुछ कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले मुखड़े को लेते हैं। जग की लाज मन की मौज दोनों को निभाना पिया मिलन को जाना। युवती अपने प्रेमी से मिलने के लिए उत्सुक है। रात का समय है इसलिए वो अनिश्चित है। वो जाना तो चाहती है, लेकिन वो ये भी चाहती है कि इस बात का किसी को पता ना चले। वो उससे मिलने जाना चाहती है। इसे मन की मौज के रूप में व्यक्त किया जाता है। वो अनिश्चित है और नहीं चाहती कि दूसरों को पता चले। इसे जग की लाज कहा गया है और उसके मन में दोनों को निभाने का संकल्प भी है। अब आते हैं पहले अंतरे पर। आरजू साहब लिखते हैं, कांटे बिथरा के चलूं, पानी ढलका के चलूं, सुख के लिए सीख रखूं, पहले दुख उठाना पिया मिलन को जाना। युवती का अपने प्रेमी से मिलने की उसकी चाहत समाज की चुभती नजरों पर भारी पड़ती है। वो नंगे पैर चल रही है, रास्ते में कांटे हो सकते हैं। आरजू साहब ने कांटे बिथराने की बात कही है। बिथरा शब्द का प्रयोग अब कहीं सुनाई नहीं देता। शब्दकोश बिखरा के जैसा ही अर्थ देता है, लेकिन गीत में जो संदर्भ है वह सावधानी से कांटों को रास्ते से हटाने और उन पर कदम रखने से बचने का है। युवती संभवतः पानी की गगरी साथ ले जा रही है। यहां प्रयुक्त शब्द है ढलका की, जिसका अर्थ छलका के करीब है। वह पानी उड़ेल नहीं रही है, लेकिन वह सावधानी से धूल भरे रास्ते पर थोड़ा पानी छिड़क रही है। शायद उसके चलने वाले पैरों से धूल ना उड़े। और फिर वह कहती है, उसे दर्द और दुख सहना सीखना होगा ताकि बाद में खुशी का स्वाद ले सके। गीत का दूसरा अंतरा तो और भी अनोखा है। पायल को बांध के उठी चुभ नांग के धीरे धीरे दबे दबे पांव को बढ़ाना पिया मिलन को जाना। पायल को बांध के से भाव यह नहीं है कि वह पायल पहन रही है, दरअसल वो पहले से ही पहनी हुई पायल को सुरक्षित कर रही है ताकि उनसे आवाज ना हो। तो फिर वो उन्हें पहन क्यों रही है? शायद इसलिए कि पिया मिलन को जा रही है, तो श्रृंगार अधूरा नहीं रहना चाहिए। अगला फ्रेज है उठी चुभ नांग के, जो सबसे अनोखा है। गीत को सुनते हुए शब्द चुभ जैसा सुनाई देता है, लेकिन वास्तव में यह शब्द चुभ है। यहां हम आरजू साहब को उनकी लेखनी के सर्वोत्तम रूप में पाते हैं। यह शब्द एक बहुत पुराने हिंदी वाक्यांश ऊब चूब से लिया गया है। उन्होंने इसे छोटा कर दिया और केवल आधे वाक्यांश का उपयोग किया गीत के मीटर पर इसे जमाने के लिए। ऊब चूब का अर्थ है उभरना और फिर आंखों से ओझल हो जाना, जैसे कि कोई वस्तु पानी में ऊब चूब रही है, यानी कभी तैरती हुई दिख रही है, कभी पानी के अंदर जाने की वजह से वह दिखाई नहीं दे रही या चूभ रही है। इस गीत के संदर्भ में युवती के मन में यह दुविधा है, जाऊं या ना जाऊं। मन पानी की लहरों में तैरती हुई वस्तु की तरह है, कभी सतह से ऊपर तो कभी पानी में डूबी हुई, जाओ या मत जाओ। उठी चुभ नांग के में नांग को लांग के रूप में उपयोग किया गया है। इस प्रकार उठी चुभ नांग के का भाव यह है कि वह अपनी दुविधा पर काबू पाती है और निर्णय लेती है कि उसे जाना ही होगा। शब्दों के साथ क्या खेला है आरजू साहब ने, भाई वाह। दोस्तों, अपने समय के लिहाज से पिया मिलन को जाना गीत का संयोजन अत्यंत आधुनिक था। जैसा कि हम कह चुके हैं कि पंकज मलिक ने भारतीय संगीत की तमाम धाराओं के साथ हल्के फुल्के पाश्चात्य ऑर्केस्ट्रेशन को मिलाकर आधुनिक गीतों की एक अत्यंत लोकप्रिय शैली विकसित की, जो फिल्मी गीतों की मूल शैली और स्वरूप बनी। इस दृष्टिकोण से पिया मिलन को जाना फिल्मी गीतों के इतिहास का एक मील का पत्थर गीत कहा जा सकता है, यानी एक ट्रेंड सेटर सॉन्ग। आज के इस हाईटेक युग में भले ही 90 साल पुराना यह गीत साज सज्जा की दृष्टि से उतना आकर्षक ना लगे, पर पंकज मलिक की कलात्मक ऊंचाइयों को छू पाना आज के दौर के कलाकारों और तकनीकों के लिए लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। दोस्तों, ये गीत इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि इसकी गूंज कई फिल्मों में सुनाई देती रही। न्यू थिएटर्स की ही 1944 की फिल्म मेरी बहन में इस गीत को एक पार्टी सॉन्ग के रूप में प्रयोग में लाया गया। यहाँ भी एक लड़की नृत्य कर रही है और एक लड़की बगल में खड़ी होकर गा रही है। इस संस्करण के लिए गायिका इला घोष की आवाज ली गई थी, लेकिन कहीं कहीं पर पंकज मलिक की भी आवाज सुनी जा सकती है। इस तरह से मेरी बहन फिल्म के इस संस्करण में ये गीत एक युगल गीत के रूप में जारी हुआ। 40 के दशक में कई तमिल फिल्मों में इस गीत की धुन पर गाने बने। पीजी वेंकटेशन, जिन्हें दक्षिण का केएल सहगल कहा जाता था, उन्होंने इस गीत को गाया 1941 की तमिल फिल्म सीता जननम में। गीत के बोल थे प्रेम असंगा सुगम पारा। तमिल के सर्वोच्च सिंगिंग स्टार्स में एक नाम था एम के त्यागराजा भागवतर। उन्होंने 1941 की ही फिल्म अशोक कुमार में गाया उल्लम कावरुम एन पावाई, जो फिर एक बार पिया मिलन को जाना की धुन थी। 1942 की तमिल फिल्म सन्यासी में एक हास्य व्यंग के गीत में इस धुन का प्रयोग हुआ। टीएस जया की आवाज में इस गीत के बोल थे कोई आप पड़म वांगलेव। इन सब गीतों के 50 वर्ष बाद 1994 की मलयालम फिल्म तेनमाविन कोम्बत में यह धुन फिर एक बार गूंजती सुजाता मोहन और एम जी श्री कुमार की आवाजों में। गीत के बोल थे इंति मनासिलोरु नानम। इस तरह से महान गायक व संगीतकार पंकज मलिक की यह अमर कृति आज भी संगीत रसिकों के दिलों को चमत्कृत करती चली आ रही है।
तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से जुड़े किस्सों और अफसानों को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए संज्ञा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
एक गीत सौ अफसाने।
Radio Playback India.